लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है एशिया और ओशियाना के देशों में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित की यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर, सिस्टर उषा तिर्की तथा सिस्टर अनुग्रह मिंज। पापुआ न्यू गिनी में रविवार 8 सितंबर को अपनी प्रेरित यात्रा समाप्त कर सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस सोमवार को एशिया और ओसियाना में अपनी 11 दिवसीय प्रेरित यात्रा के तीसरे चरण में पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश तिमोर लेस्ते पहुंचे। एयर न्यू गिनी B737 विमान ने स्थानीय समयानुसार 12:12 पर पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी के जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तिमोर लेस्ते के लिए प्रस्थान किया था। 3.5 घंटों की उड़ान के उपरांत विमान संत पापा और उनके साथ गए पत्रकारों को लिए राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति निकोलो लेबोतो हवाई अड्डे उतरा। इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सिंगापुर में संत पापा फ्रांसिस की यह 11 दिवसीय यात्रा उनकी इटली से बाहर 45वीं और उनके परमाधीक्षक काल की सर्वाधिक लंबी प्रेरित यात्रा है। पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश तिमोर लेस्ते में संत पापा फ्रांसिस बुधवार तक रहेंगे और उसके बाद सिंगापुर की ओर प्रस्थान करेंगे। सोमवार तड़के संत पापा फ्रांसिस ने पोर्ट मोरिस्बी स्थित परम धर्म पीठीय प्रेरितिक राज दूतावास में व्यक्तिगत रूप से ख्रीस्त्याग बलिदान अर्पित किया और उसके बाद वहां कार्यरत कर्मचारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और लाभार्थियों को पापुआ न्यू गिनी में अपने सुखद पड़ाव के लिए धन्यवाद देते हुए उनसे विदा ली। पापुआ न्यू गिनी में अपने मंगलमय प्रवास के स्मरणार्थ उन्होंने परमाधीक्षीय अस्त्रावरण को प्रस्तुत करने वाला एक मोजेक भेंट स्वरूप परम धर्मपीठीय राज दूतावास को अर्पित किया। पोर्ट मोरिस्बी के जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर निर्मित एक मंच पर संत पापा फ्रांसिस के आदर में विदाई समारोह सम्पन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने की। इस अवसर पर पापुआ न्यू गिनी के वरिष्ठ कलीसियाई और सरकारी अधिकारी भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। तिमोर लेस्ते की विमान यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल को टेलीग्राम भेजकर उनके देशों में सुख और समृद्धि की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी। पूर्वी तिमोर लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़े शहर दिल्ली के प्रेसिडेंट निकोलो लेबोतो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संत पापा फ्रांसिस का स्वागत गणतंत्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति होसे मनुएल रामोस होर्ता और प्रधानमंत्री जनाना गुस्मो के साथ साथ प्रेरितिक राज दूतावास के महाधर्माध्यक्ष वोशियेक जालुस्की ने किया। पारंपरिक पोशाक पहने 2 बच्चों ने इस अवसर पर संत पापा का देश में स्वागत करते हुए उन्हें ताइस अर्थात तिमोर का एक पारंपरिक दुपट्टा तथा फूलों की भेंट चढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर तैनात गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा सलामी दी गई, जिसके उपरांत संत पापा का जुलूस परम धर्म पीठीय प्रेरितिक राज दूतावास की ओर बढ़ा, जहां से स्थानीय समयानुसार लगभग 6:00 संत पापा फ्रांसिस ने अपने पहले दिन के कार्यक्रम के लिए तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भवन का रुख किया। राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत समारोह तथा राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात कर संत पापा फ्रांसिस तिमोर लेस्ते गणतंत्र के राजनैतिक, राजनयिक और नागरिक अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। तिमोर लेस्ते में संत पापा फ्रांसिस की 3 दिवसीय यात्रा का आदर्श वाक्य है, आपकी आस्था आपकी संस्कृति बने।
एशिया और ओशिनिया की अपनी प्रेरित यात्रा के तीसरे पड़ाव पर संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भवन में वहां के सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें संबोधित कर कहा,
Muchas gracias por la cordial y alegre bienvenida
मैं तिमोर लेस्ते के इस खूबसूरत देश में आपके हार्दिक एवं हर्षोल्लासपूर्ण स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस जगह पर एशिया और ओशिनिया एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। पहाड़ों, जंगलों और मैदानों से सजे, चमकते समुद्र से घिरे, फलों और बढ़िया एवं सुगंधित लकड़ी से भरपूर यह भूमि आत्मा में शांति और आनंद की भावनाएं जगाती है। लेकिन यह भूमि हाल के दिनों में एक दर्दनाक दौर से गुजरी है। इसने उथल पुथल और हिंसा का अनुभव किया है, जो अक्सर तब होता है जब लोग पूर्ण स्वतंत्रता की ओर देखते लेकिन स्वतंत्रता की उनकी खोज को नकार दिया जाता या विफल कर दिया जाता है। 28 नवंबर 1975 से लेकर 20 मई 2002 तक, यानी स्वतंत्रता की घोषणा से लेकर इससे निश्चित रूप से बहाल किए जाने तक, तिमोर लेस्ते ने अपनी सबसे बड़ी पीड़ा एवं परीक्षा को सहन किया है। फिर भी देश पुनः उठ पाने में सक्षम है, शांति का मार्ग खोज रहा है और विकास के नए चरण की शुरुआत कर रहा है। संत पापा ने कहा, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने इतिहास के ऐसे नाटकीय दौर से गुजरते हुए कभी आशा नहीं खोई और अंधकार में एवं कठिन दिनों के बाद अंततः शांति और स्वतंत्रता की सुबह हुए। उन्होंने कहा, कैथोलिक धर्म में आपकी दृढ़ता ने इन महत्वपूर्ण क्षणों को प्राप्त करने में बहुत मदद की है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 1989 में आपके देश की प्रेरितिक यात्रा के दौरान इस पर जोर दिया था। उन्होंने अपने उपदेश में याद दिलाया था कि तिमोर लेस्ते के कैथोलिकों की एक परंपरा है जिसमें पारिवारिक जीवन, शिक्षा और सामाजिक रीति रिवाज सुसमाचार में गहराई से निहित है। एक ऐसी परंपरा जो धन्यताओं की शिक्षा एवं मनोभाव से ओतप्रोत है। ईश्वर पर विनम्र भरोसा, दया, क्षमा और जब आवश्यक हो तो संकट के समय में धैर्य पूर्वक पीड़ा सहना। इस संबंध में मैं विशेष रूप से इंडोनेशिया में अपने भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपके अथक प्रयासों को याद करना और उनकी सराहना करना चाहता हूँ। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसका पहला और शुद्धतम स्रोत सुसमाचार की शिक्षाओं में निहित है। आपने कष्टों के बीच आशा में दृढ़ रहकर अपने लोगों के विश्वास के कारण दुख को खुशी में बदल दिया। प्रभु करे कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी, अन्य संघर्षों में भी शांति और स्मृति के शुद्धिकरण की प्रबल इच्छा हो, ताकि घावों पर पट्टी बांधा जा सके और घृणा को मेल मिलाप एवं विरोध को सहयोग से बदला जा सके। संत पापा ने आगे कहा, एक और सराहनीय घटना तब हुई जब देश की स्वतंत्रता की 20वीं वर्षगांठ पर आपने मानव बंधुत्व पर घोषणा को एक राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में शामिल किया, जिस पर मैंने 4 फरवरी 2019 को अबू धाबी में अल अजहर के ग्रैंड इमाम के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए थे। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि जैसा कि घोषणा में कहा गया है उससे अपनाया जा सके और स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके। निश्चय ही शैक्षणिक प्रक्रिया मौलिक है। उन्होंने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने गणराज्य की संस्थाओं की विवेकपूर्ण स्थापना करें और उनके सुदृढ़ीकरण द्वारा नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें, ताकि नागरिकों को यह महसूस हो सके कि उनका सही प्रतिनिधित्व हो रहा है और संस्थाएं तिमोर लेस्ते के लोगों की सेवा करने के लिए समुचित रूप से सुसज्जित हो सकें। अब आपके सामने एक नया क्षितिज खुल गया है जो काले बादलों से मुक्त है, लेकिन सामना करने के लिए नई चुनौतियां और हल करने के लिए नई समस्याएं हैं। इसलिए संत पापा ने कहा, विश्वास जिसने आपको अतीत में प्रबुद्ध बनाए रखा और आपके वर्तमान एवं भविष्य को प्रेरित कर रहा है, सुसमाचार के अनुरूप सिद्धांतों, परियोजनाओं और चयन को प्रेरित करे। कैथोलिक कलीसिया, उसका सामाजिक सिद्धांत, जरूरतों को सहायता एवं दान देने वाली संस्थाएं तथा शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा संस्थाएं सभी लोगों की सेवा में हैं। इस संबंध में इस तथ्य को मान्यता दी जानी चाहिए कि आम भलाई के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता राज्य के सहयोग एवं समर्थन पर निर्भर हो सकती है, जो कि परमधम पीठ और तिमोर लेस्ते के बीच विकसित हुए सौहार्दपूर्ण संबंधों के ढांचे के भीतर है। तिमोर लेस्ते जो धैर्य एवं दृढ़ संकल्प के साथ बड़े संकट के समय का सामना करने में सक्षम रहा है, आज एक शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक देश के रूप में पनप रहा है, जो एकजुटता और भाईचारे का समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध विकसित कर रहा है। आपके अतीत और अब तक की उपलब्धियों को देखते हुए यह विश्वास होता है कि आपका राष्ट्र भी आज की कठिनाइयों एवं समस्याओं का बुद्धिमानी और रचनात्मक तरीके से सामना करने में सक्षम होगा। संत पापा ने अपने संदेश का समापन करते हुए कहा, मैं तिमोर लेस्ते और इसके सभी लोगों को निष्कलंक कर भागमन की सुरक्षा में सौंपता हूँ। वे आपका साथ दें और एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और एकजुट देश बनाने के लिए आपके मिशन में हमेशा आपकी मदद करें, जहां कोई भी खुद को अलग थलग महसूस ना करे और हर कोई शांति एवं सम्मान के साथ रह सके। ईश्वर तिमोर लेस्ते को आशीष प्रदान करे।
पोर्ट मोरिसबी के सर जॉन गुई स्टेडियम में रविवार संध्या संत पापा फ्रांसिस ने देश के लगभग 10,000 युवा प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनका आह्वान किया कि वे विभाजन के बजाय मैत्री और सामंजस्य का चयन करें। अपने तैयार प्रभाषण को एक तरफ रखते हुए संत पापा फ्रांसिस ने पोर्ट मोरिसबी के सर जॉन गुई स्टेडियम में एकत्र युवाओं के साथ बातचीत की। उन्होंने उनसे कहा, पापुआ में आप लोग 800 से अधिक भाषाएं बोलते हैं, तथापि एक आम भाषा को साझा करते हैं, जो है प्रेम और सेवा की भाषा। संत पापा फ्रांसिस का अपने यहां स्वागत करते हुए पारंपरिक पोशाक धारण किए युवाओं के एक समूह ने रंगारंग नृत्य का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर किम्बे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष जॉन बॉस्को ऑरम ने अपने यहां पधारे खास मेहमान का अभिवादन किया। उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के युवाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला और कहा कि अपने परिवारों और समाज में ईसाई मूल्यों को जीना, विकास और तरक्की के लिए सीमित अवसर मिलना तथा समाज, सरकार और यहां तक कि कलीसिया की अपेक्षाओं को पूरा न करने से उत्पन्न निराशाएं युवाओं को देश छोड़कर अन्यत्र जाने पर मजबूर करती हैं। कई युवाओं ने संत पापा के समक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। पहली गवाही कैथलिक प्रोफेशनल एसोसिएशन की सदस्य पेट्रिशिया हेरिकनेन कोरपोक की थी, जिन्होंने मनोरंजन उद्योग, सोशल मीडिया और तकनीकी से अत्यधिक प्रभावित समाज में कैथलिक आस्था और नैतिकता को देखने की चुनौतियों के बारे में बात की।
I want to say these few words on behalf of all the members of our Catholic Professional Society who work with the bishops and the local churches in Papua New Guinea. No matter where we find ourselves, at home, work, church, or with friends, we encounter the many challenges of our time.
तदुपरांत रायन वुलुम ने एक टूटे हुए परिवार में अपने कठिन बचपन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कलीसिया उनका शरण स्थल बना। अंतिम गवाही लीजन ऑफ मेरी की सदस्य बर्नाडेट टुरमोनी की थी, जिन्होंने युवा लोगों पर पारिवारिक दुर्व्यवहार के विनाशकारी प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पीड़ित लोग खुद को अप्रिय और अपमानित महसूस करते हैं, जिसके कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं या फिर अपने परिवारों को ही छोड़ देते हैं।
First. The young people encounter many difficulties. We all come from families which were meant to shape and mold us into our future selves. How is it possible today when one of the issues that has been affecting young people and our society is abuse in the family?
उन्होंने कहा, पीड़ित लोग खुद को अप्रिय और अपमानित महसूस करते हैं, जिसके कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं या फिर अपने परिवारों को ही छोड़ देते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने अपनी ओर से पापुआ न्यू गिनी में समय बिताने पर अपनी खुशी जाहिर की, जो महासागरों, पहाड़ों और उष्णकटिबंध जंगलों की भूमि है। उन्होंने कहा कि पापुआ एक युवा देश है जो युवा लोगों से भरा हुआ है और उसे आशा की मुस्कान के साथ भविष्य का सामना करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा, आपकी खुशी के लिए और जिस तरह से आपने पापुआ की सुंदरता को साझा किया है, उसके लिए धन्यवाद। जहां समुद्र आकाश से मिलता है, जहां सपने जन्म लेते और चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
संत पापा फ्रांसिस ने पोर्ट मोरिसबी के सर जॉन गोइस स्टेडियम में पापुआ न्यू गिनी के युवा लोगों से मुलाकात की और उन्हें प्रेम और सेवा की भाषा का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने अपने भाषण की शुरुआत युवा लोगों द्वारा किए गए सुंदर प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देते हुए की, जिसमें पपुआ की सुंदरता का वर्णन किया गया था। संत पापा फ्रांसिस ने देश के लड़के लड़कियों को, जो भविष्य की आशा हैं, एक साथ मिलकर भविष्य के निर्माण कैसे होता है और हम अपने जीवन को क्या अर्थ देना चाहते हैं पर विचार करने के लिए कहा। उन्होंने बाबिल के टावर की बाइबल कहानी के बारे में बताकर ऐसा किया, जहां जीवन जीने और समाज के निर्माण के दो विपरीत तरीके टकराते हैं, एक भ्रम और फैलाव की ओर ले जाता है, दूसरा ईश्वर और भाइयों के साथ मुलाकात के सामंजस्य की ओर ले जाता है। फिर उनका भाषण युवाओं से संवाद में बदल गया। तैयार भाषण को एक तरफ रखते हुए मुस्कुराते हुए संत पापा फ्रांसिस ने युवाओं से भ्रम और फैलाव के मॉडल या सद्भाव के मॉडल के बीच चयन करने के लिए कहा, यह याद करते हुए कि मूसा के वंशजों ने बाबेल की मीनार के साथ क्या किया था। सद्भाव, युवा लोगों ने जोश भरे स्वर में उत्तर दिया। संत पापा ने कहा कि ईश्वर ने हमें दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए बनाया है। 800 से अधिक भाषाओं वाले देश में संत पापा युवाओं से कहते हैं कि हमें एकजुट होने में मदद करने के लिए केवल एक भाषा की आवश्यकता है। कौन सा, वे पूछते हैं, और कोई उत्तर देता है, प्यार का। संत पापा ने कहा, आपकी आम भाषा दिल की, प्यार की, निकटता की और सेवा की भाषा है, आप सभी यही प्यार की भाषा बोलें। आगे संत पापा ने कहा, उदासीनता की बुराई के खिलाफ दूसरों की देखभाल करने के लिए आपके दिल में बेचैनी होनी चाहिए और याद रखें कि युवा व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, दादा दादी के साथ निकटता। अंत में संत पापा ने अपने प्रिय विषय का परिचय दिया, हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गलती का एहसास होना चाहिए और हमें हमेशा खुद को सुधारना चाहिए। और उस पहाड़ी गीत की याद करें जो इस प्रकार है, चढ़ने की कला में जो महत्वपूर्ण है वह गिरना नहीं है, लेकिन गिरा हुआ रहना नहीं है। गिर गया, कौन गिर गया, तुम्हें क्या करना चाहिए, संत पापा फ्रांसिस पूछते हैं। उस पर हंसे, नहीं, युवा लोगों ने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, आपको उसे देखना होगा और उसे उठने में मदद करनी होगी। सोचें कि जीवन में केवल एक ही स्थिति में हम दूसरों को नीची निगाहों से देख सकते हैं, उन्हें ऊपर उठाने में मदद करते समय। बैठक में अंतिम गीत के बाद संत पापा फ्रांसिस ने आखिरी सवाल पूछा, जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इतनी सारी समस्याओं के कारण सड़क पर गिर गया हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक झापड़ देना चाहिए? युवा जोर से चिल्लाते हैं, नहीं, जो व्यक्ति गिर गया है उसके सामने आपको क्या इशारा करना चाहिए? युवा लोग जवाब देते हैं, वापस उठो। और संत पापा फ्रांसिस ने एक व्यक्ति को उठाने के इशारे की नकल की। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। संत पापा फ्रांसिस एशिया और ओशिनिया में अपनी 11 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के तीसरे चरण में तिमोर और लेस्ते में हैं। मंगलवार 10 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस पूर्वाहन में दिल्ली के महागिरजाघर में देश के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म संघियों, धर्म बहनों, सेमिनारियों और प्रचारकों से मुलाकात करेंगे और अपराहन स्थानीय समय अनुसार 4:30 बजे ताची तोलू में देश के विश्वासियों के साथ मिलकर पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।